सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं सयलोवसगणिवः संवरणेनेव जसफिट्टन्ति पाशस्सतसणमिं पाषणुयोऽं परूवेम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें अभी हमारा कर्म अनुयोग द्वार चल रहा है और उसमें भी ये जो 6 प्रकार के कर्म हैं, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, ईर्यापथ कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म। हाँ, आपकी शंका है ये, उस पर हम ये सारे अनुयोग लगा रहे हैं। आपकी शंका पेज नंबर पृष्ठ 114। आज हम 117 से शुरू करेंगे, 114 पर इनकी शंका है। हाँ पूछिए, दूसरी लाइन दूसरी पंक्ति। हाँ देखो ये यहाँ ऐसा लिखा है, इतनी विशेषता है कि ये विशेषता किस में चल रही है, मनुष्यनी में। जब मनुष्यनी जब समझते हैं यहाँ पर, तो उनके क्रिया कर्म का काल अधिक से अधिक कितना होगा, मनुष्यों में हमने कितना घटित किया था, वो 3 पल्ले तो लिए थे उसके पूर्व भव के, पूर्व कोटि का 1/3 बराबर है, क्योंकि जब पहले मनुष्यायु बांधी, फिर उन्होंने बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, क्षयिक सम्यक दृष्टि हुए, तो उनका वो काल क्रिया कर्म का इतना घटित हो जाता है। अब मनुष्यनी में क्या है, मनुष्यनी ने पहले तो वहां की मनुष्यायु बांधी 3 पल्ले वाली, यानी किसी ने मनुष्यायु बांधी, वहां मनुष्य ने मनुष्यायु बांधी, यानी पहले भी मनुष्यनी थी और बाद में भी मनुष्यनी की आयु बांधी 3 पल्ले वाली। अभी वहां सम्यक तो प्राप्त करते तो वैसा तो नहीं होता, नहीं क्षायिक के साथ तो नहीं जाएगी, क्योंकि क्षायिक के साथ कोई जीव जाता है तो पुरुष हो जाएगा, स्त्री के साथ, स्त्री पर्याय के साथ जन्म नहीं होगा, तो वहां वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में वहां जन्म लिया। मिथ्या दृष्टि अवस्था में जन्म लेने के बाद सम्यक तो प्राप्त करने के लिए कम से कम काल कितना वहां लगेगा, तो यहाँ हमारे कर्म भूमि में कितना काल लगता है, 8 साल, और गर्भ में, यहाँ गर्भ में 7 महीने भी लेते हैं क्योंकि कम से कम काल में उसको बाहर निकालते, तो वहां तो 9 महीने लिए, और 9 महीने के बाद जब जन्म हुआ तो उसके बाद कितने दिन में उसको सम्यक हो सकता है, तो ये 7 हफ्ते में। हाँ देवगति में तो अंतर मुहूर्त में युवान होते हैं, ये भोग भूमि में 7-7 दिन में ना, पहले अंगूठा चूसते हैं, रेंगते हैं, फिर थोड़े चलते हैं, जो कुछ है, तो 7 हफ्तों में वो पूर्ण, देवगति में 1 अंतर मुहूर्त में पूर्ण होते हैं, देव हो या नरक हो, वहां तो उपपाद जन्म कहने में आता है, और उपपाद जन्म में 1 अंतर मुहूर्त में युवा जैसे हो जाते हैं इस। हाँ गर्भ से 8 वर्ष तो मन यहाँ कर्म भूमि में, और भोग भूमि में 7 49 दिन 49 49 49 लिखते हैं। हाँ 49 नहीं कहेंगे, 49 एक ही है, 50 में एक उन। हाँ और कोई शंका है? पृष्ठ 108। अच्छा है, आप अभ्यास करते घर जाके। 108 नीचे से आठवीं। हाँ, देखो यहाँ क्या बात चल रही है कि तप कर्म का जघन्य काल कितना है उसकी बात चल रही है। तो तप कर्म किसके होगा? संयत से होगा, अकेला सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि में तो क्रिया कर्म है, तप कर्म छठे गुणस्थान से। तो अभी ये उसको कम से कम काल घटित करना है उनको तप कर्म। अभी कोई ऊपर से श्रेणी चढ़कर आएगा नीचे आएगा तो भी उसका तप तो चालू है, यानी उसकी तप की बिगिनिंग कब होगी? जब नीचे से वो सातवें में, यानी संयम ग्रहण करने के समय से उसको तप कर्म शुरू हुआ, बराबर है। अब वो खत्म कब होगा? फिर नीचे के गुणस्थानों में आए तो उसके लिए क्या आवश्यक है? छठे में नहीं, छठे में भी तप कर्म है। छठा सातवां करके एक अंतर्मुहूर्त में वापस फिर नीचे के गुणस्थानों में चला जाएगा, चौथे में जाएगा कि मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो उसको कहेंगे वो एक अंतर्मुहूर्त उसका छठा सातवां चला तो उसका वो तप कर्म का एक अंतर्मुहूर्त होगा जगन्य। उसके लिए कौन सा जीव लिया कि जो जल्दी से जल्दी नीचे आवे? तो दृष्ट मार्ग लिया। बहुत बार जो सम्यक को भी प्राप्त किया या संयम को भी ग्रहण किया उसने, ऐसा जीव लिया। तो मिथ्यात्व में से वो संयम को ग्रहण किया और फिर जघन्य में जघन्य अंतर्मूर्त द्वारा फिर असंयम में आया तो उसका तप कर्म का काल एक अंतर्मूर्त घटित होता है। अब हम 117 पृष्ठ पर आते हैं। दृष्ट मार्ग यानी जिसने मार्ग देख लिया है, यानी बहुत बार उसने सम्यक तो मिथ्यात्व, हाँ, उसको दृष्ट मार्ग कहते हैं। एक बार जाके आया हमने, कोई किसी नए जगह गए हैं और एक बार हमने देखी हुई जगह है और बिल्कुल नए, तो उसमें डिफरेंस होता है ना ये ढूंढने में। स्कूटर से जा सकते हैं। नहीं तो हमको किसी का पता ढूंढना है तो दो चार पांच लोगों को पूछते पूछते चले जाएंगे, या फिर स्ट्रीट नंबर लिखा हुआ तो वो देखते चले जाएंगे। मैं तो जो पता है तो फिर वो कहीं किसी को पूछने की देखने की कोई जरूरत नहीं, हाँ सीधा जा सकते हैं। देखो अभी हम पृष्ठ 117 पर आ गए हैं, उसमें हमने वो बड़ा पैराग्राफ है ना ऊपर का, द्विंद्रियादि की बात वहां देखी थी और पंचेंद्रियों की भी बात देखी थी। और पंचेंद्रियों में हमने देखा था कि प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का जघन्य काल तो क्षुद्र भवन होता है और उत्कृष्ट काल जो है सामान्य पंचेंद्रियों में पूर्व कोटि पृथत्व अधिक 1000 सागर, और पर्याप्त पंचेंद्रियों में जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल है उसका 100 सागर पृथक्त्व। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। हाँ, अधिक 1000, ये पूरा उसका काल पंचेंद्रियों में घूमने का पूरा काल, भले वो देव हो मनुष्य हो तिरंच हो नारकी हो, पंचेंद्रिय है ना तो उसका इतना काल उत्कृष्ट होता है। ये तो हम आगम के आधार से ही जानते हैं, यानी उसके अलग अलग भव होंगे कितने बार होंगे क्या, परंतु उसकी ये उत्कृष्ट लिमिट है। अब आगे के कर्मों पर घटाएंगे। अधक कर्म, ईर्यापथ कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म का काल ओघ के समान है। अधक कर्म का काल कितना देखते हम? नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा होगा, एक जीव की अपेक्षा जगन्य हमने एक समय घटित किया था और अधिक याद है असंख्यात लोक काल। ईर्यापथ कर्म का जघन्य काल एक समय, क्योंकि कोई 11वें में आया और एक समय में मर गया, दूसरे समय मर गया। तो तपक कर्म का, ईर्यापथ का उत्कृष्ट काल कौन सा होगा? ईर्यापथ का उत्कृष्ट काल, हाँ यानी बराबर पूर्व कोटि में से वो पहले 8 साल वगैरह माइनस कर देना। तपक कर्म का जघन्य काल अभी अभी जैसे हमने देखा था, जघन्य अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट तपक कर्म का काल कितना होगा? देखो तप, हाँ ग्यारहवें में भी है, हाँ बारहवें से, तो बारहवें से ही उसका काल हमने चालू करेंगे, वो अंतर्मुहूर्त भी गिनना उसमें। एक कोटि में कुछ, क्योंकि वो बारहवें में आने के लिए क्षपक श्रेणी मारने के लिए पहले 8 साल और वो उसको माइनस करना पड़ेगा। तपक कर्म का उत्कृष्ट काल वो भी, वो 8वें साल में कोई संयम ग्रहण करता है और पूर्व कोटि तक तप रहता है उसको ले सकता है। क्रिया कर्म का काल ओग के समान है। क्रिया कर्म का हमने कल देखा था कि उसका सम्यक तो बना रहे, याद है कि क्या क्या किया था पहले में? पहले अभी कहाँ कौन से स्वर्ग में गए उसको भूल जाओ, पहले में उपशम सम्यक तो प्राप्त किया था बड़े से बड़े काल में, तो वो उपशम सम्यक तो का एक बड़ा अंतर्मुहूर्त। उसके बाद 66 सागर वेदक सम्यक के साथ, और उसके बाद 33 सागर वाला, उसमें भी पूर्व कोटि और एक ऐड करना क्षयिक के साथ, ये हमने देखा था कल, ओग के समान है। अब पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल 24 अंतर्मूर्त है। चौबीस भव होते हैं, हाँ, यानी लगातार की बात होगी 24 भव। जो हमने 8 देखे थे वो अंतर, एक अंतर्मूर्त के अंदर की बात थी। हम देखते ना 8 पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के, असंगियों के, ये पंचेंद्रिय पर्याप्त लिए ना, बराबर है, ये तो 24 तो घटित होता ही है, क्योंकि पंचेंद्रिय अपर्याप्त में असंगी संगी और मनुष्य तीनों लेना, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, हाँ उसी में, क्योंकि हमने देखा था ना पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के भाव कितने हो गए, संगी के 8, असंगी के 8 और मनुष्यों के 8, मनुष्य अपर्याप्त, इस तरह से 24 होते हैं, यानी लगातार की बात है ना, ये लगातार पंचेंद्रिय अपर्याप्त हो तो प्रतिभा ही समझ में आया। यह देवनारकी को नहीं लेना है तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य और तीर्यंचों में होते हैं, तो पंचेंद्रिय में संगी भी लेना और असंगी भी, वो तो तीर्यंच के हो गए, और मनुष्यों में भी 8, 8 + 3 = 24 हो जाएगा। काय मार्गणा के अनुवाद से देखो, काय मार्गणा के भेद कितने पहले हम ख्याल में लेते हैं? दो नहीं है, 6 है, 5 स्थावर और एक, यानी वो काय मार्गणा से 6 भेद हो जाते हैं, तो उसमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये तो जनरल बात की, फिर सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक और सूक्ष्म निगोद जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? तो कहते हैं नाना जीव तो हमेशा ही रहेंगे, ये सभी के सभी 14 जीव समास हमेशा रहेंगे ही, तो नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है। पहले सामान्य लिए और फिर सूक्ष्म लिए, तो सामान्य कहो या सूक्ष्म कहो, जघन्य काल में तो क्षुद्र भव ग्रहण किया, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है, यहाँ अके नहीं, वहां सूक्ष्म बादर दोनों है, सामान्य में सूक्ष्म और बादर दोनों है, और यहाँ सूक्ष्म लिए है, क्योंकि जो सूक्ष्म में घटित होगा वो सामान्य में भी घटित होगा, क्योंकि बादर की जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा, जो कथन दोनों में लागू है उसको पहले लिया, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, यह हमने कल भी देखा था, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। सूक्ष्म के पर्याप्त अपर्याप्त एक साथ लेने पर यह बात घटित होती है, कल देखा था ना। अब बादर पृथ्वी का एक उनका अलग निकाला, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, और बादर निगोद प्रतिष्ठित जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल। अब यहाँ अपर्याप्त भी है ना, बादर में क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। बादर नहीं नहीं सामान्य में अपर्याप्त घटित होता है इसलिए वहां। हाँ उत्कृष्ट काल जो है कर्म स्थिति प्रमाण 70 कोड़ा कोड़ी से। उत्कृष्ट काल हमने कल देखा था ना, बादर जीवों में उत्कृष्ट काल कितना देखा था, पर्याप्त अपर्याप्त की चर्चा मत करो, अंगुल के असंख्यात भाग जिसमें असंख्यात कल्पकाल थे। यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी लिया, उन्हीं पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का, कर्म का हुआ, कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। इसको हमने पहले देखा था ना, कल पुस्तक चौथे में से निकाल के देखा। उन्हीं अपर्याप्त जीवों के, उन्हीं ने बादर में से अपर्याप्त प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी लगातार उसी में अपर्याप्तों में ही जन्म मरण करना। इसी कर्म की स्थिति, कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति। हाँ कर्म स्थिति उसी को कहा था हमने पहले भी। इसी प्रकार सूक्ष्म अपर्याप्तकों के जानना चाहिए, यानी सूक्ष्म अपर्याप्तकों में भी जघन्य काल क्षुद्र भवन है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म पर्याप्तकों के भी इसी प्रकार ही जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनके एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है। देखो सूक्ष्म जीवों में हमने कल देखा था, सूक्ष्म जीवों में जघन्य काल अपर्याप्तों में क्षुद्र भव ग्रहण और पर्याप्तकों में अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल दोनों में अंतर्मूर्त, परंतु दोनों का मिलकर पर्याप्त और अपर्याप्त में मिलकर सूक्ष्म जीवों का कितना काल है, असंख्यात लोक, असंख्यात लोक। बादर में क्या बात देखी थी, बादर एक इंद्रियों में अंगुल का असंख्यात अभाव, यानी असंख्यात कल्प काल दोनों का मिलकर। अपर्याप्तों में तो अंतर्मूर्त होता है उत्कृष्ट काल, और पर्याप्तों में हमने संख्या हजार वर्ष देखा था इस तरह से उसको, और फिर भी अभी बादर और सूक्ष्म दोनों को मिलकर काल कितना होगा, एक का तो अंगुल का असंख्यात भाग है और एक का तो असंख्यात लोक है, दोनों को मिलकर असंख्यात पुद्गल परावर्तन होता है, क्योंकि कभी इसमें जन्मेगा फिर उसमें जन्मेगा, इस तरह से अगर वो एक केंद्रियों में ही जन्म मरण करता रहेगा तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन घटित होते हैं, और उस असंख्यात का भी प्रमाण हमने देखा था आवली के असंख्यात भाग वाला। अब यहाँ वनस्पति कायिक जीवों के प्रयोग कर्म और समुदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि यह वनस्पति कायिक इन जनरल का है ना, तो उसमें निगोद भी आए, वो बादर भी आए, सूक्ष्म भी आए, सब कुछ आ गए। निगोद जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। निगोद पर्याय में ही वो इतर निगोद की बात है। यहाँ वहां वनस्पति कायिक लिया, वनस्पति कायिक में तो निगोद से प्रत्येक वनस्पति भी होता है ना बीच बीच में, तो उसकी अपेक्षा से वो सब असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और यहाँ अकेला निगोद की अपेक्षा लेंगे तो अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन। बादर निगोद जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है। बादर कहा पर्याप्त अपर्याप्त ऐसा डिफरेंट अभी नहीं किए। उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। उन्हीं के पर्याप्त जीवों के यानी बादर निगोद के पर्याप्त प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है पर्याप्तों में। उन्हीं के यानी निगोद की बात चल रही है ना, बादर निगोद में पर्याप्तों की बात है। उन्हीं के अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल धत जैसे दिख रहा है क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। देखो अपर्याप्तों में भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, पर्याप्तों में भी उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और बादर जीवों का उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्रमाण कहा। अब त्रस कायिक की, ये तो पांचों कायिकों की बात होगी, अभी त्रस कायिक काय मार्गणा की त्रस कायिक की बात है। त्रस कायिक और त्रस कायिक पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समुदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त है। ये दो क्यों कहे? हाँ, त्रस कायिक सामान्य लिए उसमें अपर्याप्त की अपेक्षा जघन्य का, और पर्याप्तों की अपेक्षा जघन्य होता है अंतर्मूर्त। तथा उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर और पूरा 2000 सागर। पहले तो सामान्य की अपेक्षा ली, जिसको हम साधिक 2000 सागर कहते हैं। तो साधिक क्यों लिया? क्योंकि वहां पर्याप्त और बीच में अपर्याप्तों के भी भव हो गए, तो सब मिलकर साधिक 2000 हो जाते हैं। तो साधिक में कितना लेना? पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक लेना, 2000 सागर में इतने अधिक। और त्रस पर्याप्तों की स्थिति कितनी होती है? तो पूरे 2000 सागर। शेष पदों का काल ओक के समान है। त्रस कायिक शेष पद ने यह प्रयोग कर्म और समवदान कहा। हाँ, अब तस तप कर्म अध कर्म क्रिया कर्म इरियापत, इरियापत होगा कि नहीं होगा? हो गए क्योंकि अभी अपेक्षा बदल त्रस कहा तो ये सब सभी आ गए चारों गति। शेष पदों का काल ओक के समान है। त्रस का एक अपर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल 80 द्विंद्रिय ये त्रस कायिकों में 80 साठ, चालीस और चौबीस, ये अस्सी किसके हैं? द्विंद्रिय के। हाँ, द्विंद्रिय के अस्सी, तीन्द्रिय के साठ, चतुरिंद्रिय के चालीस और पंचेंद्रियों के चौबीस, जिसमें संगी, असंगी और मनुष्य तीनों आ गए। हाँ, अपर्याप्त भाव। और चौबीस संख्या तहंतर मूर्तों का जितना जोड़ हो उतना है, यानी इतने इतने अंतर मूर्तों का जितना जोड़ो उतना है। हाँ, आधा था नहीं, ये जोड़ क्योंकि त्रसों का लिया इसलिए जोड़ लिया। वहां द्विंद्रिय के अलग थे, तीन्द्रिय के अलग थे, वहां जोड़ लिखा था। देखो देखो, ये आपको जो कहना 117 पृष्ठ पर, ये जो बड़ा पैराग्राफ है ऊपर का, उसमें छठी लाइन, वहां द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के, ऐसी बात है ना, उसके अपर्याप्त जीवों की बात है, एक जीव की अपेक्षा थी, यानी उनको अलग अलग वहां गिना है, उनका जोड़ वहां देने से नहीं चलेगा। यहाँ त्रस इन जनरल लिया है, सबको लिया है, सबको एक साथ है, इसलिए इसका जोड़ देना है, वहां जोड़ देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, फिर भी क्योंकि उसके अलग अलग जीव थे, वो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, इसलिए वहां 80, 60 और 40 लिखे थे। और यहाँ त्रस में तो सब इकट्ठे आ गए, इसलिए सबका जोड़ देना पड़ेगा, इसलिए 80, 60, 40 और 24 सबको मिलाकर कहेंगे उसको। अब योग मार्गणा, योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। ये एक समय और अंतर मुहूर्त कैसे होता है? हाँ, मरण के पे ही, या फिर योग भी पलटता है ना, योग पलटता है, वचन योग में आया और पलट मरण हो गया, तो वहां कारमान का योग वगैरह शुरू हो जाएगा, वैसे लेना उसको। और उत्कृष्ट काल तो अंतर्मुहूर्त तो होता है, किसी योग में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहता ही नहीं है। इरियापत कर्म कौमा देना, तपक कर्म और क्रिया कर्म का भी काल इसी प्रकार कहना चाहिए। अधक कर्म का काल ओघ के समान है, किसमें? किसमें? योग में क्या? तप कर्म में एक समय, नहीं वो तो वो अलग अपेक्षा है। देखो, योग का काल एक अंतर्मुहूर्त है, किसी योग के साथ वो चढ़ रहा है अभी, और उसका योग का एक समय बाकी है, और एक समय में योग पलटने वाला है। मनोयोग से वो श्रेणी चढ़ा, ग्यारहवें में आते एक समय में मनोयोग से काय योग होगा, तो ये घटित होगा ना। हाँ, तपकर्म में भी, अदरवाइज तपकर्म में जघन्य एक समय कभी नहीं घटित होता, क्योंकि तप जो कोई छठा सातवां गुण स्थान है, अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही, परंतु जिस योग में वो आया था वो योग पलट गया, तो उसका तप कर्म का भी एक समय घटित होगा। मरेगा नहीं, क्योंकि तप जब शुरू होता है तो मरेगा ही नहीं अंतर्मुहूर्त तक, क्योंकि नीचे के गुणस्थानों में से आया है तो करण लब्धि पूर्वक ही आया ना, उसमें तो विशुद्धि है उतनी वहां पर, यानी सातवें में आते ही मरण नहीं है ना उसका, क्या है? सातवें में आते ही मरण है क्या? एक समय क्या मुझे नहीं होगा ना, उसकी बात नहीं है यहाँ पर, तब तो चालू ही है ना वहां पर तप कर्म का एक समय घटित करना है, तो योग के पलटने से ही घटित होगा। अभी हमने तप कर्म का जघन्य तो हमने अभी तक देखा था, जघन्य काल हमने तप कर्म का देखा था, तो अंतर्मूर्त ही घटित किया था उन्होंने, वहां एक समय नहीं घटित हुआ था तप कर्म का, यहाँ मार्गणा में घटित करना है, यहाँ योग योग प्लस तप कर्म ऐसा लेना है, इसीलिए योग पलटने से ही तप कर्म एक समय वाला घटित होगा। क्रिया कर्म में भी ऐसे समझना, उसका एक समय में शुरू होगा उसका और योग पलट गया, यानी चौथे गुणस्थान में आते ही उसका योग पलट गया, अधकर्म का काल लोक के समान है, इसमें तो ये जघन्य एक समय और उत्कृष्ट संख्यात लोक है। वैक्रिय काय योगियों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। वैक्रिय कायोगियों में जघन्य काल एक समय कैसा लेना? योग के पलटने, हाँ वहां भी मनोयोग है ना, वचन योग है और वैक्रिय कायोग है, तो वैक्रिय कायोग में आ गया और मरण हो गया, इस तरह से उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। कायोगियों में, अभी कायोग इतनी जनरल बात की, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है। ये समझ में आया? नहीं आया? जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है, किसकी बात चल रही है? काय योगियों की। तो ये अनंत काल कैसे घटित होगा? अभी अभी हमने असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहां देखे थे? हाँ, तिरियंज एक केंद्रियों में, अकेले तिरियंज कहने से नहीं जाए, एक केंद्रियों में, यानी बार बार वो एक केंद्रियों में ही जन्म मरण कर रहा है। ये तो सादी और शांत वाला काल लिया है, कोई जीव जो निगोद में अनादि से है उसको कौन सा योग चल रहा है? काय योग है ना, भले वो अवधारिक हो अवधारिक मिश्र हो के कारमाण हो, तीनों ही काय योग के ही भेद है, तो उसकी अपेक्षा लेना यहाँ पर, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों में अन्य योग ही नहीं है, वचन योग है नहीं है, मन योग नहीं है, अकेले एक कायोग ही है, उसकी अपेक्षा लेना इसमें। शेष पदों का काल ओक के समान है, इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, कायोग के साथ की बात चल रही, कायोग में क्रिया कर्म का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार औदारिक कायोगी जीवों के सब पदों का काल कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि जहां अनंत काल है वहां अंतर्मूर्त कम 22,000 वर्ष कहना चाहिए। ये अंतर्मूर्त कम क्यों किया और 22,000 वर्ष की अपेक्षा से कहा? पृथ्वी काय की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष, तो उसमें अंतर्मूर्त कम क्यों किया? तो फिर दोबारा तो उसके पहले औदारिक मिश्र है और उसके बाद हम अकेले कायोग की बात करेंगे तो अनंत काल घटित किया हमने, क्योंकि वो बाद में जो बीच बीच में औदारिक मिश्र तो उसको जरूरी है ना, भले कारमान बीच में हो या न हो, जो सीधी गति से जाता है बिना मोड़ वाले, उसको तो बीच में कारमान का योग नहीं होगा। कारमान का योग कब होगा? जब मोड़ वाली गति होती। तो कारमान भी कायोग का ही भेद है, परंतु अकेले औदारिक कायोग वो दो चार भव नहीं चल सकेगा, क्योंकि हमेशा हर भव के शुरू में औदारिक मिश्र होगा ही। इसलिए कायोग कितने चल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कारमान कायोग हर बार होगा ही, ऐसी बात नहीं है। जो रुजुगति से जाता है, एक समय में पहुंचता है, उसका औदारिक मिश्र ही शुरू हो जाता है। बीच में एक मोड़ या दो मोड़ या तीन मोड़ से जाने वाले के एक दो या तीन समय के लिए कारमान का योग होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ औदारिक का योग की बात चल रही थी, यानी औदारिक का योग कब शुरू हुआ? वो औदारिक मिश्र समाप्त हुआ तब उसके लिए एक अंतर्मूर्त चला गया, और फिर पूरी लाइफ टाइम तक उसका औदारिक का योग ही रहा। मरण के बाद क्या होगा? या कारमान का योग होगा या औदारिक मिश्र होगा, वैकृत मिश्र होगा कि नहीं? नहीं होगा। ये ख्याल में आया कैसे घटित किया? औदारिक मिश्र का योगियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। अभी बिना पढ़े कौन कहेगा कब होता है? कपाट समुद्घात, बरोबर है, क्योंकि कपाट समुद्घात को प्राप्त समुद्घात करना, ये ध हुआ है हर जगह। केवली जिनके वह पाया जाता है, रहने की घ करना ध हुआ है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। शंका, यह कहाँ पाया जाता है? समाधान, सर्वार्थ सिद्धि से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के वह पाया जाता है। ये किसके बारे में पूछा था? औदारिक मिश्र का उत्कृष्ट काल। नहीं, ये पहले हमने पढ़ा था, नरकों में से जो आता है वो बहुत जल्दी जल्दी पर्याप्ति पूरी करता है, औदारिक मिश्र उसका जल्दी समाप्त होता है, और जो स्वर्गों से ऊपर से जितने ऊपर से आता है, वो सर्वार्थ सिद्धि से आया है, तो वो तो स्लोली चलता है उसका काम, है औदारिक मिश्र का। इरिया पथक कर्म और तपक कर्म का, तपक के आगे एक और विसर्ग देना, तपक कर्म का कितना हुआ है, कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। ये किसों की बात चल रही है? औदारिक मिश्र में ही बात चल रही है। हाँ, क्योंकि कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली जिनके वह पाया जाता है, समुद्घात। हाँ, उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि जो सहयोगी जिन निरंतर उतरने और चढ़ने के व्यापार द्वारा समुद्घात को प्राप्त हो रहे हैं, उनके संख्यात समय पाए जाते हैं। उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव में तो एक समय होगा ना, औदारिक मिश्र का काल एक ही समय है। ये नाना जीवों की अपेक्षा क्या है? देखो, अधिक से अधिक कितने जीव समुद्घात करते हैं? कोई चालीस, कैसे? चढ़ने वाले और उतरने वाले दोनों मिलकर 40 होते हैं। कपाट में कहो, दंड में कहो, प्रतर में कहो, लोक पुराण में भी 20-20 40 होते। तो इस तरह से ये एक के बाद चढ़ते रहे, तो ऐसे संख्यात समय घटित होंगे। ये नाना जीवों की अपेक्षा है। यानी नाना जीवों की अपेक्षा अभी तक हमने जो जो देखा था वो सबकाल सबकाल देखा था। अब यहाँ जो औदारिक मिश्र में इरियापथ और तप कर्म की बात है, उसमें नाना जीव सबकाल हो गए कि नहीं हो गए ये बात है। औदारिक मिश्र अवस्था की बात चले, औदारिक मिश्र प्लस इरियापथ, अभी तप कर्म को बाजू रखते हैं, औदारिक मिश्र और इरियापथ कब होगा? समुद्घात में, कपाट समुद्घात में। तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय होगा, क्योंकि दूसरे समय ऐसा हो सकता है कि कोई जीव ही नहीं है उस कपाट समुद्घात में, वो तो कुछ निरंतर बात है ही नहीं है। और अधिक से अधिक उसमें, अभी अधिक से अधिक है ना, एक साथ जो आपने 40 बात की उसकी बात नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कोई उसमें वो कपाट करते रहे करते रहे करते रहे, तो संख्यात समयों तक लगातार हो सकता है। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात है। तो जो सहयोगी जन निरंतर उतरने और चढ़ने के व्यापार द्वारा कपाट समुद्घात को प्राप्त हो रहे हैं, उनके संख्यात समय पाए जाते हैं। अब एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, इरियापथ में लेना है ना इसको, तप कर्म में भी यही घटित होता है, क्योंकि उन्हीं की अपेक्षा तप कहा है यहाँ पर। औदारिक मिश्र में एक समय तप कर्म का तभी तो घटित होगा। क्रिया कर्म का कितना काल है वो म के ऊपर बराबर करना। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है। किसकी बात चल रही है? औदारिक मिश्र के साथ क्रिया कर्म किसको होगा, कौन सा समय दृष्टि? शाव श्रमिक वाला अपन कहां से कहां जन्मने वाला है, कहां जन्म ले रहा है वो? सम्यक तो के साथ, अरे वो वहां वैकृत मिश्र होगा। हमारा औदारिक मिश्र चल रहा है। भूभूमि या नरक देव में से मनुष्य यहाँ कर्म भूमि में आने वाले, यानी सम्यक के साथ जन्मने वाले, इतनी बात है। परंतु वहाँ औदारिक है ये ख्याल में लेना है। छठे नरक से जो आने वाले हैं, सातवें से तो मिथ्या तो में आता है, उसके तो क्रिया कर्म होगा ही नहीं। देखो, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मूर्त क्यों कहा? क्योंकि अगर हम ज्यादा लेंगे, मनुष्यों में लगातार जन्मने का, या तिरेंचों में लगातार, सम्यक्तों के साथ तिरेंचों में कौन जन्मेंगे लगातार? क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य जन्मेंगे सम्यक्तों के साथ तिरेंचों में जन्मने वाले, वो तो बिल्कुल उसकी संख्या कम होगी। और ये हो सकता है कि देवों में से और नरकों में से मनुष्य में आने वाले, परंतु लगातार कितने, वो अंतर्मूर्त ही जन्मेंगे ना, बाद में बीच में तो उसके गैप पड़ेगी। सम्यक्त्व प्लस यानी अपर्याप्त अवस्था मनुष्यों की, हाँ तिरियंचों की लेना, परंतु सम्यक्त्व के साथ तिरियंच में जन्मने वाले जो है वो तो क्षायिक होने चाहिए, तो उनकी भी संख्या बहुत अल्प होगी, बहुत कम होगी। देखो कहाँ गया, जघन्य काल अंतर्म उत्कृष्ट भी अंतर्म। इतनी विशेषता है कि जघन्य से उत्कृष्ट काल संख्यात गुणा है, क्योंकि यह बहुत काल पाया जाता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्रियाकर्म की बात है ना, औदारिक मिश्र की बात। शंका, यह कहाँ पाया जाता है? समाधान, यह छठी पृथ्वी से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के पाया जाता है। हमने क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल देखा था, वो तो सर्वार सिद्धि वाले के आने वाले जीव की बात की थी। यहाँ वहाँ औदारिक मिश्र का ही काल गठित किया था, अब यहाँ छठी पृथ्वी से जो मनुष्य में आता है उसके जघन्य काल पाया जाएगा। उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है, सर्वार्थ सिद्धि से आकर मनुष्यों में उत्पन्न हुए जीव के यह उत्कृष्ट काल ग्रहण करना चाहिए। देखो पहले तो उन्होंने औदारिक मिश्र का उत्कृष्ट काल उसकी अपेक्षा बात की थी प्रयोग कर्म और समवदान के लिए, और यहाँ क्रिया कर्म के लिए उनको याद किया फिर से। वैक्रिक मिश्र का योगियों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी इतने काल के बाद वहां गैप पड़ेगा, ये बात वहां बताना चाहते हैं। वैक्रिक मिश्र ने देवों में नारकियों में जन्मने वाले जीवों की अपेक्षा बात है। शंका, यह काल कहाँ पर उपलब्ध होता है? हाँ वैक्रेक मिश्र आगे क्या वैक्रेक मिश्र का योगी वाले कहाँ है, देवों में या नरकों में जन्मने वाले? पहला जो उनका शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक का जो काल है उसको वैक्रिक मिश्र कहेंगे। तो उसमें प्रयोग कर्म समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है, तो उसको हमने अभी पढ़ा ना, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट है वो पल्ले के असंख्यात विभाग, और एक जीव की अपेक्षा वो तो अंतर्मूर्त ही होगा, तो उसमें जघन्य भी उन्होंने जघन्य अंतर्मूर्त कहा, उसकी किसकी अपेक्षा वो बता रहे हैं। यानी वैक्रिक मिश्र का कम से कम अंतर्मूर्त किसके होगा? तो कहते 6 मास तक क्षपणा करने वाला जो गिलान साधु, गिलान ने ग्लान सर्वार्थ सिद्धि के देवों में उत्पन्न होता है उसके यह काल उपलब्ध होता है। ये प्रश्न चिन्ह क्यों किया? प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, छह मास उन्होंने ये मासोपवासी वगैरह होते वैसे हो गए, यानी तप करने वाला ऐसा कुछ है। ऊपर क्या लिखा है, क्षपणा ही लिखा है ना, गोवर्ण छम मास खवण गिलान साहुमी। मेरे ख्याल से क्षपक यानी वो जो संलेखना वाले जीव होते हैं उनकी बात है, संलेखना वाले हो गए, उनको क्षपक कहते हैं ना, क्षपक निर्यापक वगैरह ऐसे कहने की पद्धति है, उनको संलेखना लेते हैं ना वो, यम संलेखना लेते हैं, मरण तक की संलेखना। एक होती वो 12 साल तक की उत्कृष्ट, वो भी हो सकते हैं। ये यहाँ ऐसे जो मुनि है संलेखना लेकर मर गए हैं और वहां सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए, ऐसे जीव लिया। तो सर्वार्थ सिद्धि में जाने पर वैक्रिक मिश्र का उनका काल अत्यंत छोटा है। वैक्रिक मिश्र किसके जघन्य होता है उसकी बात है। हमने देखा दो सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्यों में आता है उसका काल बड़ा है, और जो मनुष्यों से सर्वार्थ सिद्धि में गए है उनका काल छोटा है। वो कौन से मनुष्य जाएंगे उसकी बात यहाँ बताई गई। उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही है, किसका? वैक्रिक मिश्र का उत्कृष्ट काल। अभी वो कहां पर घटित होता है? जो चक्रधर मरकर सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होकर चक्रवर्ती, ये ब्रह्मदत्त की पता है ना, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था, मरकर सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, अति दीर्घ काल द्वारा पर्याप्तियों को समाप्त करता है उस नारकी जीव के, अभी उसको चक्रवर्ती नहीं कहेंगे, उस नारकी जीव के यह काल उपलब्ध होता है। ये देखो जीवों को उस पद में भी कितना अभिमान होते हैं ना, कोई वो पद लेकर नहीं बुलाए तो कैसा होता है यहाँ किसी को कोई पद है? वो पूर्व यानी सम्यक्त्व के फल में उनको ये पद मिला है। हाँ पर वो तो जाने वाला तो गिर के जाएगा, उसकी कहाँ बात पूछ रहे? वो कितने काल तक सम्यक तो रहता है उनका चक्रवर्ती अवस्था में, कितने काल तक सम्यक तो है? क्यों ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ है चक्रवर्ती पद में उसका सम्यक तो बना रहे ऐसा? मुझे तो यानी ऐसा कहीं कथन नहीं आया जन्म। हाँ। आगे कहाँ तक
वो राज्य कारबार में यानी चक्रवर्ती पद में ही अधिक संलग्न रहा?
हाँ वो राज अवस्था में ही जो मरता है वो तो नियम से यहाँ जाता है मेरे को, परंतु उसका सम्यक तो कब छूटता है ये बात कहीं पढ़ने में नहीं आई है। ऐसा नियम नहीं है क्योंकि चक्रवर्ती पद मिला है वो पूर्व के पुण्य में मिला है, वो सम्यक्त्व के साथ उसने जो कुछ पुण्य बांधा था। चक्रवर्ती पद में सम्यक्त्व के साथ है ना, स्वर्ग में तो जा सकते हैं परंतु वे भी दीक्षा लेते हैं, यानी वो उस पद में नहीं मरते। देखो ये क्या लिया, चक्र जो चक्रवर्ती मरकर सातवें नरक में, हाँ वो तो है ना दीक्षित की बात है ना, वो तो चक्रवर्ती पद छोड़कर दीक्षा लेता है उसमें स्वर्ग या मोक्ष में चले जाते हैं। मेरे ख्याल से दूसरे और तीसरे सातवें गए थे, वो सातवें नरक का तो नियम है, वो बिल्कुल नियम है उसका, जो दीक्षा नहीं लेगा चक्रवर्ती अवस्था में मरेगा राज अवस्था में तो सातवें नरक में चला जाता है। इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल मरकर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न हुए सम्यक दृष्टि जीव के कहना चाहिए। किसकी बात चल रही है यहां पर? वैक्रेक मिश्र अवस्था में क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होना चाहिए वैक्रेक मिश्र अवस्था में। अभी जो स्वर्गों में उत्पन्न होते तो उनका तो अपर्याप्त अवस्था छोटी है और नरकों में बड़ी है, तो सम्यक्त्व के साथ नरकों में उत्पन्न होने वाला पहला नरक में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको लिया। वैक्रेक मिश्र में क्रियाकर्म का उत्कृष्ट काल मरकर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न हुए सम्यक् दृष्टि के होना चाहिए, कहना चाहिए। अब आहारक का योगियों में प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है? नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, ध का घ करना। एक समय कैसा होगा प्रतिभा ताई? हाँ एक अंतर्मूर्त होता है, तो आहारक का योग में एक समय कैसा घटित होगा? हाँ एक समय में मर गया, पहले आहारक मिश्र था, आहारक का योग में आकर एक समय हुआ और मरण हुआ। हाँ पर मरण तो होगा ना वहां भी। हाँ मनोयोग वचन में से एक समय तक रहेगा, तो मिश्र हो जाएगा, तो मिश्र हो जाएगा, क्या होगा? औदारिक हो जाएगा। मूल शरीर में आते समय वो एक समय गणित कर रहे हैं। पहले वहां भी मनोवन मनोयोग वचन योग है, आहार का योग में से मनोयोग हुआ, वचन योग हुआ, और वे कहते कि वचन योग में से आहार का योग हुआ और एक समय में मूल शरीर में आया, तो औदारिक का योग चालू हो गया, इसलिए आहार का योग का एक समय है। वो तो होता है ना, योग तो पलटता है ना, योग की बात चले, अपना क्राइटेरिया आहारक का योग का है, तो ऐसा भी होगा ना, आहारक मिश्र में आया और एक समय में मर गया, आहारक मिश्र में मरण नहीं होता। जैसे हमने कहा मिश्र गुणस्थ तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, ये जैसा कायदा हमको मालूम है, उपशम सम्यक्त के काल में मरण नहीं होता, प्रथम उपशम सम्यक्त के काल में, वैसे यहाँ आहारक मिश्र के पंतर्मूर्त, क्योंकि वो शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती, आहारक संबंधी शरीर पर्याप्ति, तब तक उसका आहारक मिश्र है, फिर आहारक का योग हो जाएगा और फिर उसमें भी मनोयोग वचन योग पलटेंगे। हाँ, इसीलिए तो मिश्र का ना, दूसरी पर्याप्ति पूरी होने तक मिश्र है। देखो नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल, हाँ, प्रथमोपशम सम्यक्त को मैंने बोला था कि तीसरे गुणस्थान में नहीं होता, आठवें उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के आठवें के प्रथम भाग में नहीं होता, आहारक मिश्र में नहीं होता। हमने ऐसे आठ देखे थे ना, शपक वाले तो वो जो चरम शरीर है उसको तो मरण ही नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। करण परिणाम में नहीं होता है मरण, तो वो उसमें आता है ना, उपशम समय के साथ होगा वो। हाँ, ये मिथ्यात्व की क्षपणा के काल में, जब तक मिथ्यात्व की और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा हो रही है तब तक उसका मरण नहीं होगा, परंतु सम्यक प्रकृति रूप बन गए उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं, अभी उसका अंतर्मूर्त में क्षपक होने वाला है, वहां तो मरण हो सकता है, परंतु पहले जब दो प्रकृतियों का उसका क्षपणा चल रही है तब उसका मरण नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें होती कि वहां मरण नहीं होता है। देखो अभी हम आगे बढ़ते, तो नाना और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, ये आहारक का योग की बात चल रही है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, नाना जीवों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि नाना जीव भी करेंगे तो लगातार संख्यात ही जीव करेंगे, एक समय में संख्यात करेंगे और लगातार करेंगे तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हो जाएगा, बाद में उसमें अंतर पड़ता है, हमने देखा ना पृथक्त्व वर्ष का कुछ अंतर पड़ जाता है बीच में। आहारक मिश्र का योगी जीवों के उक्त सब पदों का काल इसी प्रकार कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार का काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इस योग के रहते हुए न तो मरण होता है और न योग का परिवर्तन भी होता है, ये आपने पहले बताया ना, योग के परिवर्तन से एक समय घटित होता है, तो यहाँ ना ही योग परिवर्तन है और न ही मरण है। आहारक द्विक में दब हुआ है, अधक कर्म का काल ओग के समान है, आहार और आहारक मिश्र दोनों ही योगों में अधक कर्म का काल, अधक कर्म ने औदारिक शरीर के जो, हाँ, तो ओग के समान है, यानी एक समय और वो असंख्यात लोक प्रमाण काल, अब कारमाण का योग वाले जीवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट तीन समय है। एक समय कब होगा? रुजुगति में नहीं होता है, एक मोड़ वाला। और तीन समय? तीन मोड़ वाले। और कहीं होगा तीन समय कारण? कब होगा वहां? समवदान कर्म होगा क्या? प्रयोग कर्म होगा? हाँ, इरियापत कर्म और तप कर्म का कितना काल है? अब कारमान का योग में जब इरियापत कर्म कहते हैं तब अभी वो समुद्रात को याद करना। नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य काल तीन समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तीन समय ने एट ए टाइम इतने जीव कर रहे हैं, वो जघन्य में जघन्य काल, फिर अंतर पड़ गया, कोई केवली उसमें नहीं आया प्रतर और लोकपुरण में, तब तीन समय घटित हो गए। और उत्कृष्ट काल लगातार एक के बाद आते रहे तो उत्कृष्ट संख्यात ही आएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन समय है। देखो इसमें क्या सिद्ध होता है, ऐसा कोई केवली नहीं होगा कि बस प्रतर तक आया और फिर वापस चला गया, ऐसा नहीं, वो पूरा ही लोकपुरण तक होकर फिर वापस चला जाता है। यानी किसी के आठ समय वाला ऐसा होता होगा और किसी के कम होता होगा, अकेला दंड कपाट किया और फिर वापस, ऐसे नहीं होते। हाँ, तप कर्म को भी यहाँ केवली को केवली में ही अप्लाई करना है यहाँ पर, क्योंकि कारमाण का योग के साथ तप कर्म अन्यत्र कहीं होगा कि नहीं होगा? विग्रह गति में तप कर्म किसी को होगा क्या? समय दृष्टि में क्रिया कर्म होगा, तप कर्म तो मुनियों को होता है। हाँ, तो छह से वो तो विग्रह गति में होता ही नहीं है। हाँ, तो कारमाण का योग और तप कर्म कहो या इरियापद कर्म कहो, वो केवली में समुद्घात में ही होगा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन समय है। यहाँ कारमाण का योग वो क्राइटेरिया लगाए ना, इसलिए वो तीन समय ही घटित होता है। क्रिया कर्म का काल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। ये दो ही समय क्यों लिए, तीन समय क्यों नहीं लिए? क्योंकि जब कारमाण का योग का काल उत्कृष्ट तीन समय लिया था और यहाँ तो क्रिया कर्म में दो ही समय लिया। हाँ प्रेरणा, भी आप सोच सकते कुछ, क्रिया कर्म किसके होगा? समय दृष्टि के। तो समय दृष्टि कौन हो गया? कौन से इंद्रिय वाले जीव हो गए? पंचेंद्रिय हो गए। तो पंचेंद्रिय जीव हो गए तो कहां से कहां तक जाएंगे समय दृष्टि? या तो नरक से मनुष्य में आएगा, मनुष्य से देव में जाएगी, या देव में से मनुष्य में आएंगे, तो दो समयों में उनका कार्य पूरा होगा। यानी दो मोड़ से होगा, अधिक से अधिक। तीन मोड़ किसके लगते हैं? जो एकेंद्रीय है, वो जो कोने में पड़े हैं लोकाकाश के। अब ये तो त्रसनाली के भीतर ही भीतर है ना सब। सम्यक दृष्टि है मरण कहने, सम्यक के साथ मरण कर जाने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई संगी पंचेंद्रिय और वो वात वाले वाला वायु का एक होने वाला है, ऐसा भी नहीं। उसके भी तीन मोड नहीं लगेंगे, फिर भी ये तो त्रस नाली के अंदर ही है। तो हम कोई भी घन चीज में हम कहीं से भी कहीं जाना है तो दो मोड़ से अधिक नहीं मोड़ लेने पड़ेंगे। यानी ये तीन मोड़ वाली बात एकेंद्रियों में ही घटित होती है। उत्कृष्ट काल दो समय है। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेद और पुरुष वेदी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है? नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, ये एक समय कैसे होगा जघन्य काल? वेद मार्गणा में देखो अपना क्राइटेरिया क्या है, स्त्री वेदी चाहिए। अभी स्त्री वेद की बात करेंगे, पुरुष वेद की बात बाद में करेंगे। कोई स्त्री वेदी है तो उसका काल घटित करना है, स्त्री वेद का काल एक समय। अरविंद भाई को सूझ गया। हाँ बोलो बोलो। हाँ देखिए, उपशम श्रेणी वाला जीव चढ़कर चढ़ते समय नौवे गुण स्थान की अपगत वेदी हो गया, अपगत वेदी होकर नौवे से अब जब उतर रहा है तो स्त्री वेद के साथ पहला जीव है ना, वो स्त्री वेदी वाला है तो स्त्री वेदी होगा उसका, फिर तो वहां आते ही वो मरण हो गया उसका। तो मरकर क्या होगा उसका अगले समय में, कौन सा वेद होगा? अभी वो समय दृष्टि है ना, अभी श्रेणी में मरा है तो अभी अगले भाव में उसका पुरुष वेद होगा। तो स्त्री वेद का एक समय घटित होगा। अब पुरुष वेद का ऐसा एक समय घटित होगा कि नहीं, मुझे घटित करके दिखाओ। जैसे स्त्री वेद का एक समय घटित किया, पुरुष वेद का एक समय घटित होगा कि नहीं होगा? उपशम श्रेणी उतरे समझे, पुरुष वेद शुरू हुआ, एक समय में मर भी जाता है तो भी पुरुष वेद ही हुआ उसका, पुरुष वेद चालू हो गया। तो हमें पुरुष वेद का जघन्य में जघन्य काल घटित करना है, तो कैसे होगा? मैं उसका वेद बदलना चाहिए ना, कहाँ से जाएगा एक केंद्र में?
हाँ
हाँ पर्याप्त एक पुरुष वेद का अंतर्मूर्त भव हो सकता है उसका। उन्होंने कहा कोई भी पुरुष वेद वाला पर्याप्त जीव है, उसका एक अंतर्मूर्त का भव हो गया तो वो पुरुष वेद का एक अंतर्मूर्त घटित किया, ऐसा कहते हैं। अंतर्मूर्त उसी के लिए पुरुष वेद के लिए लिखा है, एक समय को घटित होगा ही नहीं। हाँ स्त्री वेद में घटित होगा, पुरुष वेद में नहीं होगा। देखो पुरुष वेद में ऐसा भी घटित करते हैं, वो अंतर्मूर्त तो आपने एक भव की अपेक्षा लिया, परंतु कोई अपगत वेदी हुआ पुरुष वेद में आया, कब आया? उतर के नौवे के पहले भाग में पुरुष वेदी हुआ, फिर आठवें में गया, फिर सातवें में गया, फिर उपशम श्रेणी चढ़ी, तो अंतर्मूर्त होगा वो छोटा अंतर्मूर्त होगा। हाँ एक भव वाला अंतर्मूर्त बड़ा होगा। हाँ ये छोटा अंतर्मूर्त होगा। देखो तो देखो एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, ये जो एक समय लिखा ना वो स्त्री वेद की अपेक्षा है। हो उपशम श्रेणी उतर कर एक समय स्त्री वेदी होकर मरा, और हाँ देखो उपशम श्रेणी उतर कर जब वेद में सवेदी हुआ तो स्त्री वेद चालू हो गया, और एक समय में मरा, मरकर वो पुरुष वेदी हो गया, वो देव में चला जाएगा पुरुष वेद में। और जो अंतर्मूर्त है ये पुरुष वेद के लिए है, ये कैसे? उपशम श्रेणी चढ़कर नीचे उतरा, वेद शुरू हुआ पुरुष वेद वाला, और फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ी, शपक कहो या उपशम कहो कोई भी, यानी दोबारा श्रेणी चढ़ी उसने, उपशम से उतरकर दोबारा श्रेणी चढ़ी। और उत्कृष्ट काल सौ पल्लोपम पृथक्त्व प्रमाण, ये स्त्रियों के लिए, स्त्री वेदी के लिए, यानी पृथक्त्व सौ पल्ल्य, और पुरुष वेदी में સૌ સાગરોપમ પૃથક પૃથકત્વ સૌ સાગર. તપ કર્મ કા કિતના કાલ હૈ, નાના જીવન કી અપેક્ષા સબ કાલ હૈ. વેદ માર્ગણા કી બાત ચલ રહી હો. એક જીવ કી અપેક્ષા જઘન્ય કાલ એક સમય હૈ, યહી જો અભી હમને સ્ત્રી વેદ મેં ઘટિત કિયા થા. ઓર ઉત્કૃષ્ટ કાલ કુછ કમ પૂર્વ કોટિ પ્રમાણ હૈ. એક ભાવ મેં વો સંયમ ધારણ કરતા હૈ ઉસકા કાલ લિયા. ક્રિયાકર્મ કા એ સમજ મેં આતા હૈ? દેખો પૂર્વ કોટિ ઉસકી આયુ હૈ, ઓર 8 સાલ મેં વો સંયમ ગ્રહણ કિયા હૈ. બાદ મેં ઉસકા વેદ બદલેગા, ઇસલિયે ઉત્કૃષ્ટ કાલ લિયા વો. એક સમય સ્ત્રી વેદી કે લિયે લિયા હૈ. વિશેષાંક આયે, અચ્છા હા, મેં ગયા નહીં. એ તો પહેલે આપણે કો પતા હૈ ને, યે ઉસકી અપેક્ષા મેં બતાયા. ક્રિયાકર્મ કા કિતના કાલ હૈ, નાના જીવન કી અપેક્ષા સબ કાલ હૈ. એક જીવ કી અપેક્ષા જઘન્ય કાલ એક સમય. કિતના કરના મેં કિયા ઓર બતાના રહે ગયા. યે પહેલે લાઇન પહેલા શબ્દ હૈ ના, કિતના કાલ કરના, કિતતા હુઆ હૈ. अब कहते क्रियाकर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है. एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और अंतर्मुहूर्त है. उत्कृष्ट काल आदि के 3 अंतर्मुहूर्त कम 55 पल्य, ये देवियों की उत्कृष्ट आयु लिए. और उसमें सम्यक तो प्राप्त करने के लिए 3 अंतर्मुहूर्त गए उसकी बात है. तथा 2 पूर्व कोटि और 33 सागर अधिक 66 सागर है. ये पुरुष वेदियों के लिए भी नपुसक वेद वाले जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है. एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, ये भी प्रयोग कर्म और समवदान कर्म. हाँ, श्रेणी में भी घटित हो गए. जैसे स्त्रीवेद पर घटित किया था ना, वैसे नपुंसक वेद पर. और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है. वो एक इंद्रियों में नपुंसक वेदी होता है और इतना उसका भ्रमण होता है वहां पर. तपक कर्म का भंग एक समय, वो उपशम श्रेणी से आने वाला जीव सवेदी होकर मर जाएगा. ये प्रयोग कर्म की बात है ना, योग और कर्मों का बंध की अपेक्षा बात है. तपक कर्म का भंग स्त्री वेद जीवों के समान है. क्रियाकर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है. ये तप कर्म का भंग समझ में आता है? एक समय घटित किया उन्होंने, एक समय. हाँ, क्रियाकर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है. एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है. अपगत वेद वाले जीवों के प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, इरियापद कर्म और तपक कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है. 13वां गुणस्थान तो निरंतर है ना, इसलिए वो सब काल लिया. एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है. अपगत वेदी होकर मर गया तो एक समय घटित होगा. और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है. अपगत वेदी यानी वो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला, 90वें से आगे गया, अपगत वेदी हुआ, 8वें साल के बाद संयम ग्रहण किया, क्षपक श्रेणी चढ़ा तो उसका शुरू हुआ, अपगत वेदी हुआ. और पूर्व कोटि भव वाला है वो, तो 13वें में अधिक से अधिक काल रहेगा वो. हाँ, क्रियाकर्म में लिया तप कर्म इरियापद को लिया ऊपर, देखो क्रिया कर्म का काल कितना है, क्रिया कर्म की बात नहीं ना वहां, कौन से वेद वाले की बात चल रही, नपुसक वेद वालों में चल रहा है नहीं, ओहो हो न सातवें नरक में कुछ कम 33 सागर जो लिखा है नपुसक वेदी का क्रियाकर्म यानी सातवा नरक में, क्योंकि वो तीन अंतर्मुहूर्त पहले और तीन अंतर्मुहूर्त बाद में छोड़ना उनके, समझ में आया प्रेरणा बेन? देखो अरविंद भाई ने पूछा ये नपुसक वेदियों में क्रियाकर्म का काल कुछ कम 33 सागर कैसे घटित होगा, तो क्रियाकर्म ने वो तो नपुसक वेद के साथ लंबी आयु चाहिए और जो सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो सातवें नरक का नार के लिया, उसके शुरू में तीन अंतर्मुहूर्त और अंत में अंतर्मुहूर्त तीन छोड़ देना मिथ्यात्व के, तो ये वाक्य घटित होता है उसका। और जघन्य काल जो एक कर्म एक समय वाला है वो ऊपर से नीचे आया और मर गया ऐसा ही लेना ना, श्रेणी चढ़कर उतरा नीचे के गुणस्थानों में आले मर गया। देखो अब हम विशेषार्थ पढ़ेंगे, यहाँ वेद मार्गणा की अपेक्षा सब कर्मों के काल का निर्देश किया गया है, ये मार्गणा के ग के ऊपर रफार है मगर स्पष्ट है। स्त्री वेद जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय बतलाने का कारण यह है कि जो स्त्री वेद जीव उपशम श्रेणी पर आरोहण करने के बाद उतरते समय एक समय के लिए स्त्री वेद होकर मरण कर देव हो जाता है उसके यह जघन्य काल एक समय पाया जाता है। पुरुष वेदी के यह काल घटित नहीं होता क्योंकि पुरुष वेदी मरकर देवों में उत्पन्न होने पर पुरुष वेदी ही रहता है, इसलिए पुरुष वेदी जीव के उक्त दोनों पदों का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त कहते समय उपशम श्रेणी से उतार कर पुरुष वेद के उदय से संपन्न करे और अंतर्मुहूर्त काल के भीतर द्वितीय बार उपशम श्रेणी पर आरोहण करा के अपगत वेद अवस्था में ले जाए। इस प्रकार पुरुष वेदी जीव के एक जीव की अपेक्षा उक्त दोनों पदों का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त हो जाता है। एक जीव की अपेक्षा तपक कर्म का जघन्य काल एक समय दोनों वेद वाले जीवों को उपशम श्रेणी से उतार कर और एक समय के लिए सवेदी बनाकर बाद में मरण करा के घटित कराना करना चाहिए। तपक कर्म यानी वो श्रेणी में तपक कर्म वेद प्लस तप ऐसा लेना है, अकेला तप है तो वो तो श्रेणी में भी तप कर्म है, तप कर्म तो 14वें तक है, परंतु यहाँ वेद प्लस तप कर्म कब होगा तो सवेद भाग तक हम कहेंगे वेद के साथ तप है तो अवेदी हो गया और फिर सवेदी बन गया तब वेद प्लस तप चालू हो गया, पहले तप कर्म था उसको नहीं गिनना है, तो सवेदी प्लस तप हुआ और मरण हुआ उसका एक समय में। अब और आगे की बात, जो स्त्री वेद जीव उपशम श्रेणी से उतर कर और एक समय के लिए अप्रमत्त होकर मरण कर देव होता है उसके एक जीव की अपेक्षा क्रिया कर्म का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। अच्छा अप्रमत्त में वो अप्रमत्त तक क्रिया कर्म बताया था ना, यानी सातवें में आकर मरा। इसी प्रकार जो पुरुष वेदी जीव उपशम श्रेणी से उतर कर और अंतर्मुहूर्त काल के लिए यो का ये करना अप्रमत्त होकर पुनः उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है उसके क्रियाकर्म का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। क्योंकि क्रिया कर्म में हाँ मर गया तो भी उसका वेद चालू रहता है ना, और सम्यक दृष्टि तो क्रिया कर्म भी चालू रहेगा, इसलिए पुरुष वेद में वो स्त्री वेद जैसा घटित नहीं होगा, तो उसके क्रिया कर्म का जगन्यकाल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। तथा नपुसक वेद वाले जीवों के जगन्यकाल एक समय यथासंभव स्त्री वेद वाले जीवों के समान घटित कर लेना चाहिए, यानी उपशम श्रेणी उतर कर सवेद होता है, नपुसक वेदी होता है और एक समय में मर जाता है। अपगत वेद वाले जीवों के संभव सब पदों का एक जीव की अपेक्षा एक समय प्रमाण जघन्यकाल एक समय तक अपगत वेदी रखकर बाद में मरण कराने से प्राप्त होता है। एक समय के लिए अपगत वेदी होगा और फिर मर गया। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा सब पदों का जघन्यकाल एक समय कहां किस प्रकार घटित होता है इसका विचार किया शेष कथन सुगम है। अब कषाय मार्गणा के अनुवाद से चारों कषाय वाले जीवों के सब पदों का काल मनोयोगी जीवों के सब पदों के काल के समान है, और कषाय रहित जीवों के, देखो यहां नाना जीवों की अपेक्षा तो सब काल होगा और एक जीव की अपेक्षा वो तो बदलता रहता है ना, तो अधिक से अधिक उसका अंतर्मूल से तो ज्यादा काल नहीं होगा किसी भी कषाय में। एक चारों कषाय में रहने का काल तो अनादि अनंत भी हो सकेगा, उसकी बात नहीं है, एक एक कषाय में रहने का काल उसका एक एक अंतर्मूर्त होगा। और जघन्य एक समय घटित हो सकता है कि वो व्याघात कहते ना, अन्य कषाय में गया व्याघात होता है तो क्रोध कषाय में आ जाता है वापस, इस तरह से हो सकता है उसका मरण के अपेक्षा भी हो सकेगा। योगों में जैसे हमने देखा था योग के पलटने से, वैसे यहाँ कषाय के पलटने से पलटन होती है, यह मरण की अपेक्षा से क्रोध में आता है जब कोई यानी अन्य कोई किस कषाय में है और फिर वहां उसके व्याघात होना है ना, वो कषाय से पलटना होता है तो क्रोध में आ जाते हैं। और कषाय रहित जीवों के सब पदों का काल अपगत वेद वाले जीवों के सब पदों के काल के समान है। ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मति अज्ञानी और मत्यकरा और श्रुत क्या श्रुता चाहिए, ऊपर कहाँ गया, सेकंड मदी अन्नानी सुधा अन्नानी श्रुता ज्ञानी करना, इसको श्रुत ज्ञानी हुआ ना श्रुता ज्ञानी। देखो ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है। एक जीव की अपेक्षा तीन भंग होते हैं, उनमें जो सादी शांत भंग है यानी कोई अनादि अनंत भी होगा ना हमेशा, तो ये तो अभव्यों की अपेक्षा तो अनादि अनंत ही कहेंगे, सादी शांत भंग है उसमें उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये ख्याल में आता है जघन्य काल यानी सम्यक से आया और फिर वापस सम्यक में चला गया तो ये उसका जघन्य काल होगा, और कोई जो सम्यक दृष्टि होकर मिथ्यात्व में चला गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण हुआ, उसमें से कुछ कम करना क्योंकि वो उतने काल में सम्यक तो प्राप्त करेगा संयम प्राप्त करेगा और श्रेणी चढ़कर मोक्ष जाएगा। विभंग ज्ञानी जीवों में सादी शांत भंग में, देखो सादी दो ही हो गए, एक तो तीन भंग कैसे, हाँ सादी शांत, हाँ अनादि अनंत है। अब ये यहाँ सादी शांत की अपेक्षा है, सभी जीव अनादि से है वो तो अलग भंग है, अनादि शांत हो गए और कोई अनादि अनंत रहेंगे, अनादि अनंत अभव्य है या कोई भव्य भी अनादि अनंत रहेंगे, अनादि शांत वो तो ऐसा कहें ना वो तो उसका मिथ्यात्व समाप्त हो गया, परंतु यहाँ जो जघन्य काल कब घटित होगा, सादी शांत में ही घटित होगा, जघन्य और उत्कृष्ट। वही तो, जघन्य और उत्कृष्ट कहाँ पर घटित होगा, सादी शांत में घटित होगा। जो अनादि शांत हो ही गया अभी, उसमें क्या जघन्य का, क्योंकि वो तो अभी वो ऊपर ही चला गया, उसका काल नहीं गिनेंगे। हाँ, ये तीन भंग वे है, परंतु जघन्य और उत्कृष्ट वाला जो सिद्ध करना है वो सादी शांत में ही होगा। विभंग ज्ञानी जीवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है। शंका, यह जघन्य काल कहाँ पर प्राप्त होता है, उसका समाधान, देव और नारकियों से जो जीव सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर दूसरे समय में मरकर अन्य गति में चला जाता है उसके यह जघन्य काल प्राप्त होता है। देखो क्या होता है, देव और नारकियों में तो वो भव प्रत्यय पाया जाता है, अवधि ज्ञान। अब वहाँ जो समय दृष्टि देव है उनके तो अवधि ज्ञान यानी स्व अवधि होता है, तो उपशम समयक्तों के काल में वो उनके स्व अवधि रहेगा। उपशम समयक्तों के काल में एक समय में वो सासादन में आ गए, और सासादन में आकर भले सासादन का कितना भी काल हो, परंतु वो वहाँ आकर वो मरण हुआ, उनका मरण हुआ या सासादन में एक समय में रहे, ऐसा है ना, मरण की बात नहीं हुआ, सासादन में एक समय के लिए आए, तो सासादन में आने पर क्या हुआ, विभंग ज्ञान हुआ ना वो। जब तक उपशम समय दृष्टि थे तब तक उनका अवधि ज्ञान था, और सासादन में आने पर क्या हुआ, विभंग ज्ञान हुआ, और फिर मर गए। सासादन में तो एक समय में सासादन में आकर मर सकते, उपशम समय तो के काल में मरण नहीं था, परंतु विभंग ज्ञानी एक समय तक रहा और सासादन में आते ही मरण हो गया उनका। उसके जघन्य होता है। उत्कृष्ट काल, ये किसका उत्कृष्ट काल, विभंग का। प्रारंभ के अंतर्मूर्त से न्यून 33 सागर है, ये 33 सागर कहाँ घटित होगा, नरक में, विभंग ज्ञान की बात चल। और अंतर्मूर्त कम क्यों किया, बोलो, यहाँ तो कोई समय दर्शन का सवाल नहीं है। देखो, अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता, पर्याप्त होने पर विभंग ज्ञान होता है। अपर्याप्त अवस्था में किसी जीव को ये जो सु अवधि है वो तो चालू रहता है, किसी भी अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त है ना, निवृत्ति अपर्याप्त, यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त की बात चले। नारकी और देवों में जो गुण वहाँ भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, सभी अभी विभंग ज्ञान की बात चल रही ना, सभी मिथ्या दृष्टि देवों को तो वहाँ पाया ही जाएगा, उस भव के सभी जीवों को। वो कब शुरू होता है, मिश्र अवस्था खत्म होने के बाद, पर्याप्त तो होने पर शुरू होती है। इसलिए प्रारंभ के अंतर्मूर्त से न्यून कहा, 33 सागर है, जो सातवीं पृथ्वी में प्राप्त होता है। आभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म और क्रिया कर्म का कितना काल है, यह भी समय दृष्टि है ना, नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है। रुकना पड़ेगा ये। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। मयंक भाई।